लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रदर उदय खलको के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। पवित्र बाइबल में हम नबी एलिय्याह के बारे पढ़ते हैं, जो प्रभु ईश्वर के एक महान नबी थे। उन्होंने अपने समय में बड़े साहस के साथ भविष्यवाणियां की। कार्मेल पर्वत पर बाल देवता के नबियों को चुनौती देकर प्रभु ईश्वर की शक्ति एवं सामर्थ्य को सब इसराइलियों के सामने प्रकट किया। नबी एलिय्याह ने जीवित प्रभु को आंधी, भूकंप या अग्नि में नहीं, बल्कि मन समीर में पाया। वे प्रभु के लिए इतने उत्साहित थे कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। OCD या डिस्काल्ट कार्मेलाइट ऑर्डर के ब्रदर उदय खलको नबी एलिय्याह को अपना आदर्श मानते हैं। वे उनके समान प्रार्थना एवं मनन चिंतन का जीवन व्यतीत करते हुए समुदाय में रहकर प्रभु के वचनों का प्रचार करना चाहते हैं। नबी एलिय्याह के समय में इसराइली लोग प्रभु से दूर चले गए थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। उसी तरह आज भी बहुत सारे लोग प्रभु से दूर चले गए हैं और शांति की खोज कर रहे हैं। ऐसे भाई बहनों से ब्रदर उदय कहना चाहते हैं कि प्रार्थना एवं मनन चिंतन में ही शांति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि उसी से प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है ब्रदर उदय खलको के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, आज आप लोगों को बतलाते हुए खुशी हो रही है कि हमारे बीच में ब्रदर उदय खलको आए हुए हैं। वे भारत से हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए रोम में आए हुए हैं, और आज ये सौभाग्य हमें मिला है कि वे हमारे साथ में हैं। तो मैं तमाम श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ ब्रदर उदय। और इस भेंट वार्ता में आगे बढ़ने के पूर्व मैं आपका परिचय आपके ही श्रीमुख से जानना चाहूंगी।
मैं भी आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिस्टर अनुग्रह, फादर संजय और सिस्टर उषा। कहे कि मैं 3 साल यहाँ था, लेकिन भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि मैं यहाँ आके आप लोगों से मिल सकूं। हम लोग तो सभी जानते ही हैं कि कोरोना के चलते कि हम किसी से मिल नहीं सकते, यही एक डिफिकल्टी था। लेकिन अभी मैं ये अपॉर्चुनिटी मिला मेरे लिए कि मैं यहाँ आके आप लोगों से मिल सकूं, ये भी मेरे लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोगों से बात कर सकूं, अपने बारे में बता सकूं, अपने एक्सपीरियंस जो यहाँ इटली में मेरा कैसे अनुभव था वो सबको मैं बता सकूं। सबसे पहले तो मैं अपना बारे में अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम उदय खलको है, मैं भारत देश का निवासी हूँ और मेरा पारिस केडिंग पारिस है।
तो आपको यहाँ पढ़ाई करते हुए क्या अनुभव हुआ, क्या क्या आप ले करके जा रहे हैं यहाँ से?
हमारे क्षेत्र से देखें तो बहुत कम ही लोगों को ये मौका मिलता है इधर बाहर आके पढ़ाई करने के लिए, आदमी सबसे मिलने के लिए, नया जगह देखने के लिए। ये मैं अपने तरफ से लकी के रूप में लेना चाहूंगा, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका मिला इंडिया से यहाँ आके पढ़ाई करने के लिए। बहुत लोगों से मिल के, उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे लिए एक अच्छा मौका मिला। और यहाँ का 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा भी बहुत अच्छा रहा। कहे कि हम लोग वहाँ से पढ़ने के लिए आए थे यहाँ थियोलॉजी कंप्लीट करने के लिए।
बहुत अच्छी बात, हम बधाई देना चाहेंगे कि आप एक अलग देश में अलग भाषा संस्कृति के बीच अपने ये पढ़ाई पूरी की है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पढ़ाई के अलावा आपको क्या चीज अच्छा लगा यहाँ का?
पढ़ाई के अलावा मुझे तो यहाँ का क्या बोलेंगे कल्चर बहुत अच्छा लगा। यहाँ का आदमी सबका रहन सहन जो हम लोगों का है उससे बहुत अलग है, मेल मिलाप है, रहन सहन है, उससे बहुत कुछ चीज यहाँ अलग है। वही सबको एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके सब में आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिला, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनकल्चरेशन, जैसे दूसरा कल्चर को हम एक्सेप्ट करके अपना मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तो हम लोग को प्रेरणा करता है। वही सब चीज हमको अच्छा लगा यहाँ।
अब मैं जानना चाहूंगी कि आप इस जमाने में जब लोग दुनिया में विकास करना चाहते हैं, अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा परिवार बसाना चाहते हैं, और ऐसे समय में आपने परिवार को छोड़ करके एक पुरोहित बनने का निर्णय किया है, बुलाहट्य जीवन जीकर कलीसिया और लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया है, तो ये सचमुच एक साहसिक निर्णय है। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आप क्यों पुरोहित बनना चाहते हैं?
ये चीज मैं बहुत पहले ही मेडिटेट करता था कि पुरोहित बनना और पुरोहिताय जीवन जीना, ये सब चीज एक तरफ से देखेंगे तो बहुत मुश्किल है और एक तरफ से देखेंगे तो बहुत सहज है। मैं अपने बुलाहट के बारे में बताना चाहूंगा तो सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा, कहे कि उन्हीं के बदौलत आज मैं जहां तक पहुंचा हूं, वही सबका आशीर्वाद, गाइडेंस, देखभाल, वही सबका आशीर्वाद के चलते मैं यहां तक पहुंचा हूं। और बुलाहट में जितना भी दुख तकलीफ भी होता है वो सब वही सब चीज याद दिलाता है कि हम लोग का एम क्या है, हम लोग का उद्देश्य क्या है। बहुत कम ही क्या बोलेंगे अपॉर्चुनिटी रहता है कि हम अपने बुलाहट को समझ सके, लेकिन धीरे 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 यही जो बुलाहट मिला है उसी को हम लोग आगे बहुत लोगों से मिलने के बाद में, बहुत लोगों से बातें करके उसको हम लोग समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी हम लोग को क्या बोलेंगे क्राइसिस होता है, जो हम लोग का जीवन में बहुत कुछ दुख तकलीफ आता है, लेकिन उसको भी प्रार्थना और ईश्वर की कृपा के चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरू से मेरा इच्छा था कि जो भी मैं समाज में जाऊंगा उसमें थोड़ा सा मनन चिंतन, प्रार्थना और अपोस्टोलिक वर्क हो, जिसमें कम्युनिटी लाइफ हो, यह सब चीज मैं पहले से सोचता था कि किसमें यह सब चीज मैं पा सकता हूँ, यह सब चीज कहाँ अनुभव कर सकता हूँ। जब मैं कार्मिल में 2011 में प्रवेश किया तो शुरू में तो समझ में नहीं आता था क्या है, तो धीरे धीरे मैं उसका कैरिसम पढ़ना शुरू किया, क्या है हम लोग संत इलाइजा का उदाहरण लेके, जिस प्रकार उसने एकांत में रह के प्रभु का वचन को सुनने के लिए वो हमेशा तरसता था, जब वो वचन ग्रहण करता था, सुनता था, उसको मेडिटेट करने के बाद में आदमी लोगों को बताने के लिए जाता था, उसी तरह वही चीज हम लोग भी एक्सेप्ट करके अभी ये फॉर्मेशन में हम लोग अपने आप को तैयारी करते हैं।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रदर उदय खलखो के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा, मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका वो क्या बनना चाहती है। लेखिका हैं समता बोरीकर। श्रोताओ, हर माता पिता की दिली तमन्ना होती है कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अंक से पास करें, और इसके लिए वे उनकी पढ़ाई के पीछे लग जाते हैं। पर कभी कभी कुछ माता पिता अपने बच्चों को खूब मजबूत बनाने की इच्छा से उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट में डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वह बने जो वे खुद नहीं बन पाए। अपने बच्चों के जरिए अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की कोशिश में कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत सख्त हो जाते हैं, उन्हें दूसरों से तुलना करते हैं या डरा धमका कर पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में माता पिता के प्रति डर और खुद में हीनता की भावना आ जाती है। कभी कभी वे परिस्थिति का सामना न कर पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। मेरी ऐसे माता पिता से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें, उनकी रुचि और रुझान को देखते हुए उसे विकसित करने में मदद करें, उनके साथ समय बिताएं, तो आपके बच्चे स्वस्थ और पढ़ाई में भी रुचि रखेंगे और जीवन में सफलता हासिल करेंगे। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका, वो क्या बनना चाहती है।
सविता भाई, सविता, ये कस्तूरी कहाँ है? आधा घंटा हो गया मुझे घर आए और इस लड़की की कोई खबर ही नहीं है।
अभी तो गई है, पड़ोस वाले रोहित के घर खेलने गई है।
अभी?
हाँ।
अरे आधा घंटा मुझे हो गया है आए हुए। भाई ना तो इस लड़की का कोई पढ़ाई पर ध्यान रहता है और ना तुम्हारा इस पर ध्यान है। जरा ध्यान दिया करो वरना बाद में रोती रह जाओगी।
अरे अरे कुछ भी बोले चले जा रहे हो, अभी सिर्फ सिक्स में तो है हमारी बच्ची, इतनी भी उम्र नहीं कि दिन भर पढ़ती रहे।
अब यही तो तुम्हारे भेजे में समझ नहीं आती, अच्छी आदतें बचपन में ही डालनी पड़ती हैं, नींव मजबूत होनी चाहिए बस।
तुम्हारी अच्छी आदतों के चक्कर में उस बेचारी को खेलने का समय ही नहीं मिलता।
अरे कैसी बातें करती हो तुम सविता, खेलना जरूरी है या पढ़ना?
पीछे पड़े रहते हो बिचारी के। कस्तूरी बेटा, कस्तूरी घर आ जाओ बेटा, पापा बुला रहे हैं।
क्या गा रही हो कस्तूरी?
पापा वो ना एक नई मूवी आई है दंगल, उसका गाना है, मैं सुनाऊं आपको?
तुमसे मैंने गाने को कहा क्या? बेटा ये गाने वाने में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में, पढ़ाई के आगे कुछ भी काम नहीं आएगा, पढ़ाई काम आएगी बस। तुम्हारी वो टेस्ट का क्या हुआ, मैथ्स का क्या हुआ तुम्हारा?
पापा मुझे 8 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10।
क्या 8? क्यों भाई क्यों 8? सविता, अरे सविता कहाँ हो भाई सविता?
क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो सविता सविता?
देखा देखा तुमने, तुम्हारी साहबजादी को मैथ्स में 8 नंबर आए हैं, 8।
तो अच्छे तो है ना, 8 मार्क्स कुछ कम होते हैं क्या 10 में से?
अच्छे हैं, व्हाट डू यू मीन? अरे 10 आउट ऑफ 10 क्यों नहीं आए? हाँ, इसलिए कि उसकी माँ जो है उसको अपनी सहेलियों से छुटकारा नहीं।
क्या बोल रहे हो, अरे 10 में से 8 कोई बुरे नंबर है क्या? देखो उसे इतना टॉर्चर मत करो, वो तुमसे डरने लगी है, सहमी सहमी सी रहने लगी है।
डर रही है मगर सीख तो नहीं रही ना।
पापा पापा आप मम्मी को मार डालिए, झगड़ा मत कीजिए, अब ना मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी पापा, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी पापा, और ना मैं टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स लाऊंगी पापा।
हाँ जी, तो आप कसूर की मम्मी हैं?
जी मैडम, आपने क्यों अचानक फोन करके बुलाया? कस्तूरी ठीक तो है ना? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, कहाँ है वो?
देखिए कस्तूरी अपनी क्लास में है, लेकिन सॉरी टू से लेकिन वो ठीक नहीं है।
जी ऐसा क्या हो गया मैम?
देखिए मैडम, आजकल वो बहुत डरी हुई रहती है, गुमसुम रहने लगी है, पहले की तरह एक्टिव भी नहीं रहती, और आज तो उसने हद ही कर दी। आज तो म्यूजिक के पीरियड में उसने म्यूजिक क्लास जाने से ही मना कर दिया, और जब उसे डांटा गया तो रोने लगी।
अच्छा, कस्तूरी को ऐसा क्या हो गया अचानक?
देखिए, आप उसकी मम्मी हैं। मैडम, बच्चों पर इतना प्रेशर ठीक नहीं होता। देखिए, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और इतनी छोटी क्लास में ये आउट ऑफ मार्क्स, ये ठीक नहीं है मैडम।
जी जी जी, आप ठीक कह रही हैं मैडम, मैं इस बात को समझती हूँ, मगर कस्तूरी के पापा उसे लेकर बहुत पॉजिटिव हैं।
देखिए, उनकी बात तो ठीक है, लेकिन उनका ये प्रेशर कस्तूरी सहन नहीं कर पा रही है मैडम। पढ़ाई करने से उसे डर लगने लगा है, 100% तो क्या, उल्टे उसके नंबर कम आने लगे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि आपको उसे इस तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए मैम।
जी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ, मगर कैसे करूँ कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।
देखिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। शायद आप जानती ही होंगी कि आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, आप उसे प्रोत्साहित कीजिए, पढ़ाई के तनाव को कम करने का ये सबसे अच्छा उपाय हो सकता है।
मगर उसके पापा उसके गाने से बहुत जुड़ते हैं।
देखिए, इस समय उसकी भलाई सोचना ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक टीवी रियलिटी शो के लिए ऑडिशंस हमारे स्कूल में हो रहे हैं, और अगर आप कहें तो हम अपनी तरफ से कस्तूरी को गवा देते हैं।
जी मैडम, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैडम।
भाई पवन जी, कहाँ है कस्तूरी? भाई हुई बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई।
जी मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं?
अरे भाई, कस्तूरी बच्चों के सिंगिंग कंपटीशन में अव्वल आई है, अव्वल, उसका सिलेक्शन हो गया है। वाह 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 वाह, क्या गाया था उसने, वाह वाह वाह।
अच्छा, अरे कस्तूरी, सविता।
जी पापा।
ये भाई, ये आ गया हमारा स्टार, देखो भाई। अरे वाह, क्या खूब गाते हो, क्या बात है, शाबाश। अरे अब तो तुम बॉम्बे जाओगी और वहां गाना भी गा सकोगी।
भाई तुम कंपटीशन में सिलेक्ट हो गए, मुझे बताया भी नहीं तुमने।
सॉरी पापा, अब नहीं गाऊंगी पापा।
क्यों नहीं गाओगी बेटा तुम?
वो अंकल पापा को पसंद नहीं है अंकल।
तो ये बात है क्या पवन जी, हैं इतनी होनहार बेटी पर तुम सख्ती करते हो? काश अगर मेरा बेटा या बेटी ऐसा गला पा लेती तो मैं तो खुशकिस्मत समझता अपने आप को, पर आप तो बात समझ ही नहीं पाए।
अरे आपको पता है, 400-500 बच्चों में सिलेक्ट हुई है हमारी कस्तूरी। देखिए, पढ़ाई के अलावा भी उसकी एक दुनिया है, उससे उसकी दुनिया मत छीनिए प्लीज।
ओह बेटी, बेटी यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास। बेटी मुझे माफ करो, अपनी नाकामी के फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुमसे बहुत ज्यादती की। आई एम सॉरी बेटा।
नहीं पापा, मुझे पता है आप मुझे ना बहुत प्यार करते हैं, और ना आप मुझे सबसे अव्वल देखना चाहते हैं।
वो क्या बनना चाहती है? अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, दुर्गेश नंदनी और संतोष जोशी। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।